कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पांचशील के भक्तवृंद, हमारे श्रीमद् भागवत के सायंकाल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस सत्संग का श्रवण और वर्णन का फल विश्व की शांति के लिए, इस महामारी से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करेंगे, ऐसा संकल्प करके अपने हृदय की शुद्धि के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और विश्व की शांति के लिए अपने घरों में बैठ के सत्संग का सुख लाभ ले रहे हैं। कल हमने छठे स्कंद श्रीमद् भागवत, जिसमें भागवत का पोषण विषय है, भगवान पोषण करते हैं अपने सृष्टि में सभी जीवों का, तो उसके अंतर्गत हमने 11वें अध्याय में वृत्तासुर के दिव्य चरित्र का गुणगान करने का जो अभी ये श्रृंखला में कथा को आरंभ किया है। कल हमने वृत्तासुर की उत्पत्ति, तुष्टा आदित्य प्रजापति के यज्ञ में इंद्र को मारने के लिए उस यज्ञ से ये प्रकट हुआ वृत्तासुर, वृत्त का कल अर्थ बताया था, ढकने वाला, कवर करने वाला, और असुर क्योंकि ये असुर जाति में प्रकट हुआ। असुर जाति का मतलब, असुर वो होते हैं जो देवताओं के विरुद्ध होते हैं, देवताओं को सुर कहते हैं, और जो देवताओं के अपोजिट में होते हैं उनको असुर कहते हैं। और देवता कौन होते हैं? विष्णु भक्ता देवता, तत्विप्रिय असुराहा, जो विष्णु के भक्त हैं वो देवता और उसके विरुद्ध है वो असुर। लेकिन ये वृत्तासुर भगवान विष्णु के विरुद्ध नहीं है, अपोजिट नहीं है, अगेंस्ट नहीं है। इसलिए कल भी हमने कहा था कि जहां वृत्तासुर बोलेगा वहां व्यास देव लिखेंगे श्री वृत्त वाच, न वृत्तासुर नहीं लिखा है, श्री लगा के वृत्त ही लिखा है। तो इंद्र के द्वारा अपने गुरु का सम्मान नहीं हुआ, गुरु बृहस्पति अदृश्य हो गए, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से विश्वरूप को तुष्टा के बेटे विश्वरूप को पुरोहित के रूप में इंद्र ने स्वीकार किया, और विश्वरूप के पास नारायण कवच की विद्या थी जो इंद्र को मिल गई। यज्ञ में विश्वरूप इंद्र के पक्ष में आहुति देने के साथ अपने ननिहाल के पक्ष में, जो असुरों का पक्ष है, उनको आहुति दे रहा था। इंद्र को क्रोध आया, उनके तीनों सर काट दिए। अगर आप भागवत में अंदर देखोगे तो तीनों सरों में से तीन पक्षी बने हैं, कौन कौन से पक्षी बने हैं ढूंढ के निकाल लीजिएगा कल। और फिर देवताओं और असुरों के बीच में भारी संग्राम हुआ, देवता फिर भी वृत्तासुर के सामने सफल नहीं हो पा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने वृत्तासुर के वध के लिए तपस्वी दधीचि ऋषि के हड्डियों को, अस्थियों को वज्र बना के वृत्तासुर का वध करने की प्रेरणा दी। इंद्र ने दधीचि ऋषि से हड्डियां मांग ली। इस प्रसंग में हम कहते हैं कि अपने अंग कभी दान करने हैं, जैसे आजकल कहते हैं आंख दान कर दो, गुर्दा दान कर दो, तो यहां दधीचि ने अपने अंग दान किए लेकिन इंद्र को दान किए, जिसके लिए भगवान ने प्रेरणा दी थी। और इसके बाद दधीचि के हड्डियों से बने हुए वज्र, जिसमें 100 दांत थे और वो चक्कर जैसा था, चक्कर क्या है, देखते हैं तो वज्र तो गदा जैसा ही लगता है लेकिन उसमें 1000 दांत हैं, वैसे चलता है ऐसे लिखा हुआ है, जो काटता है जैसे सुदर्शन चक्र काटता है ऐसे। तो अब फिर देवासुरों का संग्राम हो रहा है, आमने सामने देवता और असुर खड़े हैं, असुरों का नेता वृत्तासुर है, देवताओं का नेता इंद्र है, और असुर भाग रहे हैं, देवताओं के सामने टिक नहीं रहे हैं तो वृत्रासुर असुरों को अपनी माँ का विष्टा कह के, माता का विष्टा और मूत के समान पूत हो, अगर वीर नहीं हो, धर्मात्मा नहीं हो तो ऐसे पुत्र की क्या आवश्यकता है। और देवताओं को भी कहने लगे तुम वीर हो तो भागते हुए को क्षत्रिय जो धर्म का नियम है उसके विरुद्ध क्यों मार रहे हो, तुम्हें लड़ना है तो मेरे सामने खड़े हो जाओ। और फिर इंद्र को कहता है कि तुम मेरे भाई के शत्रु हो, हत्यारे हो, गुरु के हत्यारे हो, ब्राह्मण के हत्यारे हो, आज मैं तुम्हारे को मार के जमलोक भेज दूंगा और तेरे को मारने के बाद मेरे त्रिशूल से अग्नि भी तेरा दाह नहीं करेगी, तुम्हारे तो शव को गीध खाएंगे। और फिर कहता है कि अगर मैं मर गया तो मैं मुनियों की कृपा से सदगति को प्राप्त कर लूंगा। और उसके बाद 20वें श्लोक पे कल हमने विराम दिया था, इस श्लोक को फिर पढ़ लेते हैं। आपका पुस्तक अगर साथ में है तो 20वां श्लोक खोल लीजिए। ननवेश वज्रस्तव शक्र तेजसा हरे,
ननवेश वज्रस्तव शक्र तेजसा,
दधय दधीश दधीचे तपसा च तेजतः, तेनैव शत्रुं जहि विष्णो यन्त्रितो,
तेनैव शत्रुं जहि विष्णो यन्त्रितो,
यतो हरिः विजयः श्रीः गुणास्ततः,
यतो हरिः विजयः श्रीः गुणास्ततः।
वृत्रासुर इंद्र के हाथ में वज्र की तरफ इशारा करके कह रहा है, ननो निश्चित रूप से एष यजे, तो आपके हाथ में ये वज्र है ना शक्कर। कल हमने कहा था, आज आपके प्रश्न में देखा शक्कर का मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, यज्ञ को कर्तु कहते हैं, शत का मतलब शो, तो जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र के पद के लिए अधिकारी होता है। बलि महाराज 99 यज्ञ कर रहे थे, कर चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे, तब वो वामन देव ने जाके उनसे सब कुछ मांग लिया था, तो वो इंद्र के पद के लिए अधिकारी हो गया था। आने वाले मनवंतर का इंद्र बलि महाराज बनेगा। तो शक्कर सत्यकृतु, पूरा शब्द है सत्यकृतु, तो सत्यकृतु को शॉर्ट फॉर्म में इंद्र की ओर इशारा करने के लिए कहते हैं शक्कर, जैसे उसकी सिग्नेचर है छोटी। तो हे इंद्र, हे सत्यकृतु, तुम निश्चित रूप से इस वज्र, ये जो आपके हाथ में वज्र है ना, बोले इस वज्र में क्या है, बोला इसमें दो विशेषताएं हैं वज्र की। पहली वज्र की विशेषता क्या है, हरेर तेजसा, इसमें हरि का तेज है, हरेर का तेज है का मतलब भगवान श्री हरि की प्रेरणा से ये आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें हरि का तेज है, भगवान की प्रेरणा है। और दूसरा दधीची तपस्या तेजस तेजत, और दूसरा दधीचि ऋषि की तपस्या का इसमें तेज है, उसकी हड्डियां, उसको भी नारायण कवच की विद्या थी, उसकी हड्डियां अपने आप में तपस्या के बल से पुष्ट हैं। तो वज्र में ये दो विशेषताएं हैं, हरि की तेज और दधीचि के तप का तेज है। और फिर कहते हैं तेनेव शत्रु, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा मैं शत्रु हूं, जही, जही का मतलब होता है समाप्त कर दो, खत्म कर दो, नाम निशान मिटा दो। तेनेव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो, ये जो विष्णु द्वारा भगवान ने आपको वज्र का यंत्र दिया है ना, इससे आप मेरा नाश कर दो, मेरे को समाप्त कर दो, मेरे को मार दो। तो इंद्र कहता है अभी तो आपने मेरी ही गदा को पकड़ के मेरे ही हाथी के सर के ऊपर मार दिया और 14 गज पीछे जाके हाथी गिरा, तो क्या पता कि ये वज्र काम करेगा कि नहीं करेगा। तो वृत्रासुर कहते हैं यतो हरि, जहां हरि होगा, जहां हरि, जिस तरफ हरि होगा, मुझे निश्चय है, मैं जानता हूं कि भगवान देवताओं के पक्ष में है। और ये भागवत का श्लोक तब एकदम याद आना चाहिए, एतेश्चांश कलाह पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंति युगे युगे। जब इंद्र जैसे देवताओं के लोक में संकट आता है तो भगवान उनकी रक्षा करता है। तो वृत्रासुर ये मान रहा है कि इंद्र भगवान आपके पक्ष में है, आपका प्रेरणादाता भी है और आपका सहायक भी है। और जहां हरि होगा, यतो का मतलब जहां हरि होगा, वह निश्चित रूप से विजय होगी, श्री होगी। श्री का मतलब वैभव होगा, ऑपुलेंस होगा, लक्ष्मी को श्री कहते हैं। गुणांस, गुणांस का मतलब वहां अच्छे शुभ गुण होंगे। तत मतलब जहां, और तत मतलब वहां, जहां भगवान होगा वहां ये सब गुण होंगे। इसके लिए कल हमने गीता का पूर्णाहुति का श्लोक संजय का ये निर्णय सुनाया था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विज्ञो भूर्ति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, यहां अर्जुन ऐसे जैसे वैसे देखा जाए तो एक एक रूप से इंद्र के अंश से ही अर्जुन था। तो जहां भक्त है और जहां भगवान है वहीं विजय होगी। तो ये श्लोक कहने के बाद वृत्तासुर, इसके बाद जो 21वां श्लोक कह रहा है, उसमें वृत्तासुर जैसे भीष्म पितामह को मालूम था कि मैं सेनापति बना हूं कौरवों का, लेकिन कृष्ण अर्जुन का सारथी है, तो निश्चित रूप से इस महासंग्राम में हमारी बलि चढ़ेगी, हमको प्राण त्यागना पड़ेगा। और यहां वृत्तासुर भी मानता है और जानता है कि इस युद्ध में मेरे को प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, लेकिन प्राण की आहुति देने से पहले वृत्तासुर अपने संकल्प को दृढ़ करके इंद्र के सामने कह रहा है। क्या कह रहा है? अहम समाधाय मनो यथा अह नहा। अहम समाधाय मनो, मैं अपने मन को समाधि में स्थित करूंगा, मेरे मन को मैं समाधि में स्थित करूंगा, यथा जैसे कहा जाता है न हमारे लिए। किसके, मानो कोई पूछे समाधि में किसके ऊपर मन तुम अपना केंद्रित करोगे, कहां मन को लीन करोगे समाधि में, क्या ब्रह्म के ऊपर लीन करोगे, निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर लीन करोगे, प्रकाश के ऊपर लीन करोगे, अपने आप का ध्यान करोगे? नहीं, मेरे मन को मैं एकाग्र करके समाधि में स्थित करूंगा संकर्षण तत्चरणार विंदे। संकर्षण बलराम जी का नाम है। संकर्षण शब्द का तीन अर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के जन्म से पहले योग माया को कहा था, क्योंकि आपको इसको खींचकर देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में ले जाओगे, तो इस खींचने के कारण इनका नाम संकर्षण होगा। दूसरा, ये दो वसुदेव के और नंद बाबा के दो कुलों के बीच में सेतु का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, इसलिए इसको संकर्षण कहेंगे। और तीसरा, क्योंकि ये आदि गुरु है संकृष्ण बलराम, इसलिए ये भक्तों को खींच खींच कर भगवान के चरणों में लाएगा। तो जो खींच कर भगवान के पास लाए उसको संकृष्ण कहते हैं। तो बलराम जी के पास तो हल है, उससे भक्तों को खींच कर भगवान के चरण में लाते रहते हैं, इसलिए उनका नाम है संकृष्ण। तो यहां वृत्तासुर कहता है, मैं मेरे मन को भगवान बलराम जी के चरण कमलों में चरणारविंदे, अरविंद चरण और अरविंद, अरविंद कहते हैं कमल को, चरण कमलों में, मैं संकर्षण के चरण कमलों में मेरे मन को स्थापित करूंगा। समाधाय मनो, मेरा मन पूर्ण रूप से भगवान संकर्षण के चरणों में स्थित हो जाएगा। और फिर आप क्या करना, त्वद तुम्हारा वज्र रंसो, तुम्हारे वज्र के द्वारा रंसो लुलित ग्राम्य पशो पाशो। लुलित वैसे कहते हैं तोड़ देना, काटना, छिन्न भिन्न कर देना, जैसे रस्सी को काटना होता है उसको कहते हैं, जैसे कवच जब छिन्न भिन्न होकर टूट जाता है तो उसको कहते हैं लुलित सरम वारी। ऐसे भीष्म पितामह की प्रार्थना में ये शब्द लुलित आया है। तो आप जब मैं भगवान संकृष्ण के चरणों के ध्यान में निमग्न हो जाऊं तो उस वक्त आप अपने वज्र से मेरे ग्राम पास को, ग्राम पास का मतलब है, वैसे ग्राम शब्द वैसे गांव को कहते हैं नाम सामान्य भाषा में, और ये शरीर भी हमारा नव द्वारे पूरे देही है, तो ये भी एक गांव है, लेकिन ये किसका गांव है, तो दूसरा इंद्रियों का समूह है। तो इंद्रियों के सुख जो कर्मों के कारण दुख और सुख मिलता है, जो शरीर में मिलता है, ये शरीर, इस शरीर को कहते हैं ग्राम्य पाश। ये मेरा शरीर जो ग्राम्य पाश, पाश का मतलब रस्से में, और ग्राम्य का मतलब इंद्रिय तृप्ति के, इंद्रियों वाले इस शरीर में कर्मों के कारण दुख सुख को भोगने के लिए रस्सी से बंधे हुए मेरे इस शरीर को आप काट देना अपने वजर से, तो कहां जाओगे? आपका रस्सा कट जाएगा तो कहां जाओगे? गतिम मुने रत्राम्या याम्या, मैं मुनियों की गति को प्राप्त करूंगा। मुनियों के लिए प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, नारद जैसे मुनियों की गति को, जो सदा भगवान के स्मरण में रहते हैं, सदा भगवान के गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं। गतिम मुनिर यामी, मैं मुनियों की गति को प्राप्त करूंगा। अपविद्ध लोकाह, कहां जाओगे? अपविद्ध लोकाह, कैसे लोका? अपविद्ध, छोड़ के संसार को, भौतिक जगत को छोड़ के। ये कैसा लोक है? जिसमें बड़ा अपवाद है, यहां बहुत बड़ा दुख होता है, हर प्रकार के सब चीजें यहां क्षणिक होती हैं, अस्थाई होते हैं। तो यहां से मैं छोड़ के और चला जाऊंगा, मुनियों की गति को प्राप्त करूंगा। तो ये वीरतासुर का संकल्प है, इंद्र को कह रहा है, युद्ध भूमि में कह रहा है कि आप अपने वज्र से मुझे क्यों नहीं मारते? तुम वज्र चलाओ, मैं शंकर्षण के चरणों का ध्यान करूंगा, और मैं ये कर्मों के बंधन के शरीर को त्याग करके जो अस्थाई इस जगत में दुख का कारण है, मैं मुनियों की गति को प्राप्त करूंगा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, समाधाव मना जो शब्द है वो बहुत बुद्धि, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कि अंत समय भगवान, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं विष्णु संकृष्ण नारायण कृष्ण, जो भी भगवान के विष्णु तत्व हैं उनका ध्यान करना। तो अंत समय भगवान के नामों का ध्यान करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान के गुणों का ध्यान करना। ये जो कीर्तन भी होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जैसे हम करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान के गुण का कीर्तन भी होता है कि भरे भगवान दयालु है, कृपालु है, बहुत भगवान भक्त वत्सल है। ऐसे भगवान के रूप का भी कीर्तन होता है, पीताम्बर धारी है, मोर मुकुट धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो ऐसे भगवान के रूप का कीर्तन है, भगवान के गुण का कीर्तन है, भगवान के लीला का कीर्तन है, भगवान के धाम का कीर्तन है। तो इसमें मैं भगवान के नाम का कीर्तन सबको सुलभ है, तो वो प्रभुपाद जी कहते हैं करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि भक्त को जिसका मन भगवान के चरणों में आविष्ट हो गया है, जिसका मन भगवान को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिसके हृदय में आसक्ति का उदय उत्पन्न हो गया है, आसक्ति के स्तर पे पहुंच गया है, उसको भगवत धाम जाने के लिए, इस शरीर को छोड़ने के लिए कोई भय नहीं रहता। वो हमेशा तैयार रहता है कि भौतिक जगत के ग्राम पासे से छूट के मैं भगवान के चरणों को प्राप्त करूंगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसे तो ये शरीर एक दिन वैसे भी छूटना है, फिर भी मूर्ख जो हैं और बदमाश जो लोग हैं वो केवल इस शरीर के ऊपर ही अपने जीवन को केंद्रित करते हैं, और भगवान के धाम जाने का उनके मन में कभी इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती। और यहां वृत्तासुर भगवान के धाम जाने का विचार कर रहा है। अब अब ये वृत्तासुर की शिक्षा है, ये शिक्षा वृत्तासुर की नहीं है। इस दो श्लोकों को हम मानते हैं बलराम जी की शिक्षा, संकर्षण की शिक्षा अथवा गुरु तत्व की शिक्षा, जो सब गुरु शिक्षा देते हैं वो शिक्षा इस श्लोक के ऊपर केंद्रित, दो श्लोकों के ऊपर केंद्रित है। मानो इंद्र पूछता है कि संकर्षण ने क्या तुमको सिखाया है, तुम ऐसे मरने के लिए तैयार हो रहे हो। तो वृत्तासुर ये श्लोक उच्चारण करके बलराम जी की संकर्षण की शिक्षाओं का इंद्र को जो है बोध करा रहा है। पुंशाम कलय किलय कांत धीयाम स्वकानाम, यः संपदो दिवि भूमौ रसायाम, न राति यद द्वेष उद्वेग आदे,
न राति यद द्वेष उद्वेग आदे,
मदः कलि व्यसनं संप्रयाशः,
मदः कलि व्यसनं संप्रयाशः।
तो ये पहला शिक्षा का श्लोक है बलराम जी का, गुरु जी का अथवा सब गुरुओं की शिक्षा मुख्य रूप से केंद्रित करके वृत्तासुर इस श्लोक में कह रहा है। पुनश्याम का मतलब कोई भी व्यक्ति जो साधन करता है, भगवान की सेवा करता है, कैसी सेवा, एकांतिक धीह, कील का मतलब निश्चित रूप से एकांतिक धीह, एकांतिक धी, धी कहते हैं बुद्धि को, एकांत बुद्धि में एकाग्र बुद्धि, एकाग्र बुद्धि भगवत गीता में अगर आपको देखना है तो स्थित प्रज्ञ कहते हैं इसको, प्रज्ञ बुद्धि का ऊपर का स्तर है जब बुद्धि भगवान के ऊपर केंद्रित होती है। तो स्थित धी, स्थित धी, यहां जो शब्द है धीयान, धीयान एकांत, एकांतिक बुद्धि, एकांतिक बुद्धि मतलब बुद्धि जिसने एक का वर्ण किया है। जैसे धी मही वरेण्यम, धी मही जो हम कहते हैं गायत्री मंत्र में, तो धी यहां बुद्धि है और वरेण्यम का मतलब भगवान का वर्ण किया, एक पति का वर्ण जैसे पत्नी करती है ऐसे ये बुद्धि रूपी पत्नी एक भगवान का वर्ण करे, तो ऐसी बुद्धि को भागवत में सती मती कहा गया है। सती मती वो है मुकंद, मुकंद चरणों में जो रति लगे उसको सती मती कहते हैं। सती मती वो बुद्धि जो भगवान के चरणों में लगे, और यहां लिखा है और भागवत का पहला श्लोक भी मंगलाचरण में, सत्यम परम धीमहि, हमारी बुद्धि परम सत में लगे, और परम सत है श्री कृष्ण। तो यहां वृत्तासुर कहता है जिसकी बुद्धि भगवान में, केवल भगवान में लगी हुई है, अथवा जिसने बुद्धि में भगवान को बिठाया है, जैसे गीता में कहते हैं मई मन आदस्व मई बुद्धिम निवेशय, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सारथी की जगह पे बिठाया था जो बुद्धि का स्थान है, इसका मतलब जिसने अपनी बुद्धि में भगवान को निवास कराया है, जिसका जिसकी बुद्धि भगवान में शुद्ध भक्ति से, एकांत की भक्ति से भगवान में लगी है, तो फिर उसको क्या मिलेगा। तो कहते हैं स्वका नाम, उसको भगवान अपना मान लेता है। आप इसका मतलब, अर्जुन ने भगवान को अपने रथ की बागडोर दे दी तो भगवान ने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया, अपना कुटुंब मान लिया। भीष्म पितामह कहते हैं विजय रथ कुटुंब, अर्जुन के रथ को आपने अपना कुटुंब मान लिया। जैसे कुटुंब की रक्षा करने के लिए कूटनीति से काम लिया जाता है, ऐसे आपने अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। तो जो भक्त अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को बुद्धि में निवास कराते हैं, सदा ही भगवान का ध्यान करते हैं, उनको भगवान अपना मान लेते हैं। स्व का नाम का मतलब, स्व का मतलब अपना, भगवान उसको अपना मान लगते हैं। पर जो उसको भगवान अपना मान लेते हैं उसको क्या देते हैं, यहां लिखते हैं क्या नहीं देते हैं। जिसको भगवान अपना मान लेते हैं उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं। जब भगवान अपने आप को दे देते हैं तो वो चीजें नहीं देते हैं जो दुख का कारण है। और कितने दुख का कारण है आप समझ लीजिए कि तीसरी लाइन में द्वेष उद्वेग आदि मदह कली व्यसन संप्रयास है, इतने दुख हैं, ये सब दुख हैं। द्वेष उद्वेग आदि मद कली व्यसन संप्रयास ये सब दुख हैं। पहले दुखों को समझ लीजिए, फिर क्या नहीं देते हैं उसको सुनते हैं। द्वेष का मतलब दूसरे से शत्रुता करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे को नीचे गिराना। उद्वेग का मतलब, उद्वेग वैसे कहते हैं उल्टी को, जैसे पेट में नीचे खाना जाना चाहे बाहर आ जाए तो उसको उद्वेग कहते हैं। किसी व्यक्ति को आप उद्वेग में डालो मतलब उसको दुखी करो, उसको परेशान करो, उसको दुखी करो, या उद्वेग का प्रभुपाद यथ लिखते हैं परेशान करना, एंग्जाइटी। और तीसरा है आदि, आदि कहते हैं मानसिक चिंताओं को, आदि और व्याधि, व्याधि शरीर में होती है, आदि मन में होती है, आदि व्याधि। और मद, मद का मतलब अहंकार, और कली का मतलब झगड़ा, और व्यसन का अर्थ है कि जो नशई आदमी से नशा छूट जाता है, नशा नहीं मिलता है तो उसको कितना परेशानी होती है, कितना उसको संकट होता है, उसको कहते हैं व्यसन। व्यसन का मतलब वो चीज जो आपके पास है चली जाए तो फिर आपको जो तड़प होगी उसको व्यसन कहते हैं। और संप्रयास का मतलब बहुत बड़ा प्रयास करके उसको संभालना, उसको पकड़ना, उसको रखना, उसको बचाना, उसके जाने के ऊपर हाय घोड़ा करके दुखी होना, तो ये सब दुख हैं। तो भगवान जिसको अपना मानते हैं उनको इन दुखों से बचाना चाहते हैं। बोला ये इन दुखों का कारण क्या है, तो उन दुखों का कारण सुन लीजिए। यह संपदो द्वी भूमौ रसायाम नराति,
उसमें नीचे जब लिंक में जाएगा ना तो वहां दो निशान बने हुए वीडियो का और चीजों को।
यह संपदो, उनको संपदी नहीं देते हैं, संपदा नहीं देते हैं, संपदा कहां की संपदा नहीं देते हैं, देवलोक की दिवी। कहां की संपदा नहीं देती है, भौमो धरती की। कहां की संपत्ति नहीं देते हैं, रसायाम, रसायाम मतलब नीचे के लोगों की, जैसे नीचे का जो स्वर्ग है भौम स्वर्ग, हम तो रहते हैं भूलोक में, इससे नीचे जो स्वर आदि, इसके ऊपर जो स्वर्ग लोग है उसको तो स्वर्ग लोग कहते ही हैं। पृथ्वी के ऊपर भी जम्बूद्वीप में भौम स्वर्ग हैं, और उसके नीचे भी जो सूतल आदि लोग हैं उनमें भी स्वर्ग से ज्यादा सुविधाएं हैं। तो नीचे के लोगों का संपत्ति, धरती की भूमि की संपत्ति, भूलोक की संपत्ति, स्वर्ग लोक की संपत्ति नहीं देती। तो कौन सी संपत्ति देते हैं, बोला भगवत धाम की संपत्ति देते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्ति की संपत्ति देते हैं। वो संसार के इन संपत्तियों को कुंती महारानी भी भगवान को पाने में रुकावट मानती है। तो संपत्ति नहीं देता भगवान। हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रहा,
आवाज क्लियर आ रही है प्रभु जी, बिल्कुल।
अच्छा वो डॉक्टर राय ज़ादा जी कहते हैं आवाज नहीं आ रही,
उन्होंने अपनी आवाज खोली हुई है, अपनी आवाज म्यूट करें उसको
जी। तो अब ये संकृष्ण जी की शिक्षा है, गुरु जी की शिक्षा है, जो इंद्र को वृतासुर सुना रहा है कि जिन साधकों ने एकांत की शुद्ध भक्ति से अपनी बुद्धि में भगवान को बिठा दिया है, मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जीभा से भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, उनको भगवान अपना मान लेते हैं, भगवान उसको अपना मान लेते हैं। और जिसको भगवान स्व का नाम अपना मान लेते हैं उसको स्वर्ग की भूमि की और नीचे की लोगों का धन वैभव ओज तेज बल नहीं देते हैं, न राती नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? बोला ये तीनों लोगों में जिनके पास ये चीजें हैं उनसे दूसरे लोग द्वेष करते हैं, शत्रुता करते हैं और उनके साथ हमेशा झगड़ा रहता है, और दूसरा दूसरों को उद्विघ्न होता है। भक्तों के लक्षण में तो 12वें अध्याय में यस्मान नो द्विजते लोको लोका नदो, जिसके द्वारा किसी को उद्विघ्न न हो और जो किसी के उद्विघ्न से उद्विगत न हो वो भक्त मुझे बहुत प्यारा है। तो भगवान न धरती की न स्वर्ग लोक की और न नीचे के लोगों का वैभव देते हैं, अपना जिसको भगवान मान लेते हैं। ये श्लोक भी कभी ध्यान में आता है, प्रभुपाद जी ने जब इस श्लोक को पढ़ा था भागवत में, जिसको मैं अपना मान लेता हूं, जिसको मैं अपना मान लेता हूं उससे संसार का सारा ही वैभव धन और सब कुछ छीन लेता हूं, तो फिर अपने सब उनसे दूर हो जाते हैं, तब वो पूर्ण रूप से मेरे शरण में आता है। लेकिन इस श्लोक को आधा नहीं समझना चाहिए, पूरा समझना चाहिए। प्रभुपाद जी की तात्पर्य में लिखा है कच्चे भक्त से ले लेता हूं पक्के भक्त को दे देता हूं। कच्चे से ले लेता हूं का मतलब है कि उसको सदुपयोग न करेगा, उसको ये सारे संकट आएंगे इसलिए ले लेता हूं। जब वो पक्का हो जाता है, जैसे प्रभुपाद जी पक्के हो गए, तो पूरी दुनिया के अंदर उनको असीम संपत्ति भगवान ने दे दी, पूरे विश्व के अंदर इतने सारे आध्यात्मिक केंद्रों का स्थापित किया और इतना बड़ा भव्य जो है कृष्ण भावना अमृत संघ का आंदोलन स्थापित किया। आज भी इस आंदोलन के अंतर्गत कई लाख लोगों को, कोई 4-5-6 लाख लोगों को इस संकट के समय में भोजन वितरण करने का कार्य हो रहा है। तो ये सारा धन संपत्ति भगवान के प्रचार के काम में आने वाली, ये हमारे अंदर ये दुख का कारण नहीं बनती है। तो इसलिए हम इस सत्संग में जब ये प्रसंग लेते हैं तो कहते हैं इसलिए हमको पक्का बनना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। कच्चा है तो गवाएंगे, पक्का है तो कमाएंगे, पक्का बनाएंगे, पक्का बन जाएंगे तो जो आएगा भगवान की सेवा में लगेगा, और कच्चे रहेंगे तो जो आएगा वो चला जाएगा क्योंकि वो हमारे बंधन का कारण हो जाएगा। तो यहां वृत्तासुर जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को जिनको अपना मान लेते हैं, अपना पार्षद मान लेते हैं, अपना एसोसिएट मान लेते हैं, अपना परिवार का मान लेते हैं, उसको ये दुख के जो दुख का मूल कारण है स्वर्ग का वैभव, धरती का और रसातल का, रसातल में सूतल लोक में इतना सुख है और नीचे जहां दैत्य और दानव रहते हैं, कल हमने ये शब्दों का अर्थ कहा था, दिति के पुत्रों को दैत्य कहते हैं, दानों के पुत्र को दानव कहते हैं, आदित्य के पुत्रों को आदित्य कहते हैं। तो ये असुरी प्रकृति के लोग हैं जो नीचे रहते हैं, दैत्य और दानव, दैत्य दानव कद्रु के पुत्र नाग, नाग ये जो नीचे रहते हैं, इन सबके पास भी बहुत वैभव है, ये स्वर्ग के समान इनके पास सुख है, किसी का इनको भय नहीं है, केवल सुदर्शन चक्र भगवान के का भय रहता है। तो इन तीनों लोकों में किसी को मैं ऐसा संपत्ति नहीं देता हूं जिसके कारण द्वेष होता है, शत्रुता होती है, उद्वेग होता है और आदि होती है, मानसिक चिंताएं होती हैं, क्योंकि इन चीजों को पहले इकट्ठा करने में बड़ा परिश्रम होता है, संभाल के रखने में चिंता होती है, दूसरे शत्रु बनते हैं, कोई लूटना चाहता है, कोई छीनना चाहता है, कोई चोरी करना चाहता है, और इसलिए उद्वेग होता है। और अगर ये रह जाए तो मद हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और चार नशे नारद जी ने भी कहे हैं, नल कुबेर और मणि ग्रीव के प्रसंग में नारद जी ने कहा है चार प्रकार का नशा होता है। एक नशा होता है सुंदर रूप का, दूसरा नशा होता है ऊंच विद्या का, तीसरा नशा होता है उच्च कुल में जन्म का, और चौथा नशा होता है धन का। और नारद जी कहते हैं इन चार नशों में सबसे खतरनाक धन मद अंधा। धन का मद, यहां शब्द है मद, मद का मतलब अहंकार, आदमी को अंधा कर देता है। तो ये भगवान क्यों नहीं संपत्ति देते हैं, ताकि इनको अहंकार ना आए, और अहंकार भगवान को स्वीकार नहीं है। भगवान के पास जाने के लिए निम्रता चाहिए, और अहंकार निम्रता के बिल्कुल विपरीत है। भक्ति के रास्ते में निम्रता चाहिए, तृणाद अपि सुनीचे न तरोर अपि सही सुनो न। तो मद होगा, और फिर कली, कली का मतलब झगड़ा, हमेशा झगड़ा झगड़ते रहते हैं। आप देखें कि स्वर्ग में भी लड़ाई रहती है सदा, देवासुरों की लड़ाई होती है, एक देवता उनके पास वैभव है और एक असुर उनके पास वैभव है। असुर रहते हैं नीचे के लोगों में, जिसको रसातल कहा गया है, और दिव्य लोक जहाँ लिखा है यहाँ रहते हैं देवता, इनमें हमेशा लड़ाई रहती है। और ये लड़ाई तो हमको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस धरती के ऊपर लड़ाई तो हमारे आंखों के सामने, कई लड़ाइयाँ तो हमने अपने जीवन में आंखों के सामने देशों के बीच में देखी है। काय के लिए लड़ाइयाँ होती है, और एक ही लड़ाई का कारण है, मैं बड़ा हूँ कि तुम बड़े हो, तुमसे मैं बड़ा हूँ, बस ये कारण है लड़ाई का। ये तीन चीज़ों के ऊपर लड़ाई होती है, कंचन कामनी और कीर्ति। कंचन का मतलब धन, कामनी स्त्री, और कीर्ति बड़ाई अपनी के लिए, ये लड़ाई का कारण है संसार में। जर जन जमीन, जर का मतलब धन, जन जन का मतलब स्त्री, और जमीन का मतलब धरती, इसके ऊपर दुनिया में लड़ाई होती है। तो ये कली रहता है। और व्यसन, व्यसन शब्द की परिभाषा है, धन चला जाएगा तो बहुत दुख होगा, नहीं होता है तो इतना दुख नहीं होता है, आने के बाद चला जाता है तो बहुत दुख होता है। व्यसन का मतलब है नशे करने वाले को समय के ऊपर नशे की चीज नहीं मिलेगी तो उसको बहुत पीड़ा होगी, तड़प होगा, और वो जो कष्ट सहना पड़ेगा उसको व्यसन कहते हैं। तो ये तीनों संपत्तियां एक समय छूट जाती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि ये जगह ही हमको छोड़नी पड़ेगी, ये स्थायी रहने की जगह ही नहीं है। तो फिर जो व्यसन होगा उससे भगवान बचाना चाहते हैं। और अंतिम शब्द है संप्रयास, सम्यक प्रयास। प्रयास का मतलब तो सबको आता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सम्यक का मतलब पूरा ध्यान केवल उसी चीज को संभालने में लग जाता है, जीवन पूरा हो जाता है, और आत्मा के उन्नति की तरफ, भगवान की भक्ति की तरफ समय नहीं रहता है, और पागल की तरह उसी धन के पीछे लगा रहता है। तो यहाँ संकर्षण की ये शिक्षा है, तो आप इसका अनुवाद पढ़ लेंगे, और फिर प्रभुपाद जी इस श्लोक के भाव को ऐसे लिखते हैं कि वृत्तासुर भी भगवान का भक्त है और इंद्र भी भगवान का भक्त है, दोनों भक्तों की जो इच्छा है उसको भगवान कैसे पूरी करेंगे। वृत्तासुर कैसे भगवान का भक्त है, ये दो या तीन दिनों के बाद जब प्रसंग आगे बढ़ेगा तो हमको समझ में आएगा कि वृत्तासुर कैसे भगवान का भक्त है। वृत्तासुर के अंदर में भक्ति कूट कूट के भरी हुई है, तो दोनों भक्त हैं, तो दोनों के साथ भगवान कैसे व्यवहार करते हैं। तो प्रभुपाद ने गीता का ये श्लोक तात्पर्य में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं वैसे उसके साथ व्यवहार करता हूँ, वैसे सारा संसार ही मेरे पास ही आता है, कोई जानता है कोई नहीं जानता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्र भी भगवान का भक्त है, वृत्तासुर भी भक्त है, वृत्तासुर भगवान को पाना चाहता है और इंद्र स्वर्ग के वैभव को बचाना चाहता है। तो इन दोनों में किसके ऊपर भगवान की कृपा ज्यादा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं इंद्र से वृत्तासुर के ऊपर भगवान की कृपा ज्यादा है। इंद्र को वज्र दिलाया है, इंद्र की इच्छा पूरी कर रहे हैं कि तुम्हारे को स्वर्ग का राज तेरा बना रहेगा, लेकिन वृत्तासुर की इच्छा मुनि गति प्राप्त करने की है। साधु को जो गति होती है, भक्त का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने की है, तो उसकी गति को भी प्राप्त करने के लिए भगवान उसकी इच्छा भी पूरी करेंगे। इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, दोनों भगवान के भक्त हैं लेकिन दोनों में वृत्तासुर के ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा है, क्योंकि वो भगवान को पाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि हमारे को भौतिक कोई संपत्ति नहीं चाहिए, और फिर ये दोष लिखा है। और नीचे प्रभुपाद ने एक चीज लिखी है, के भक्तों के पास भी भगवान संपत्ति, धन और वैभव देते हैं, लेकिन भक्तों के पास जो ये आता है ये उनके कर्मों के कारण नहीं आता है। ये भगवान अपनी भक्ति के कार्यों के प्रचार के लिए उनको इन सब चीजों का सुविधाएं देते हैं, क्योंकि वो अपने भौतिक भोग के लिए जीवन में उपयोग में नहीं लाते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि सब कुछ भगवान ने लेने के बाद हमको इतना दिया है, जिसका ये वृंदावन में प्रवचन देते हुए कह रहे थे कि मंदिर में आने वालों के हृदय को देखा करो, क्योंकि भगवान ने प्रेरणा दी है तब वो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, उनको भगवान से परिचय कराओ। और फिर प्रभुपाद ने कहा उनकी जेब में मत देखा करो, उनकी जेब में मत देखा करो, क्योंकि जो दिल देगा तो सब कुछ दे देगा। और फिर प्रभुपाद ने कहा देखो हमारे पास कुछ नहीं थे, हम अमेरिका यहाँ से खाली हाथ गए थे, केवल भारत के 40 रुपये थे, लेकिन भगवान ने जब दिया तो आज 10 साल में अरबों की संपत्ति पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत संघ के नाम में है। और प्रभुपाद ने कहा भगवान जब देता है तो वो लेने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान लक्ष्मी भक्त के साधु के प्रचार के कार्य के लिए उनके चरणों में अपने आप पहुंच जाती है। और प्रभुपाद ने फिर इस भाव को कहा, यहाँ कह रहे हैं कि एक दिन कहा कि इतना भगवान मुझे दे रहा है लेकिन क्योंकि मैं एक पैसा भी अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य में नहीं लगाता। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्तों के पास धन की आवश्यकता, जैसे आज हमको भोजन खिलाना है, बेचारे जो रोज दिहाड़ी कमाने वालों को नहीं मिल रहा है, तो कई भक्त कितने ही धर्मात्मा लोग हैं जो अपने साथ भोजन बनाते हैं, जाके वितरण करते हैं, खिलाते हैं, तो इसके लिए भी तो धन चाहिए ना। तो ये धन पर्याप्त मात्र में भगवान भक्तों के पास किसी भाग्यशाली के धन को सदुपयोग करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए भेज देता है। तो ये धन उनके कर्मों का नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है, जो भगवान के प्रसाद को कृपा के रूप में, भगवान के नाम के प्रचार में, भगवान के भक्ति के प्रचार में, भगवान के भक्तों के, भगवान के मंदिर के निर्माण में, भगवान के सत शास्त्र के वितरण में जो धन है वो धन भगवान की कृपा से आता है। तो वो धन बंधन का कारण नहीं है, उस धन में झगड़ा नहीं है, उस धन में उद्वेग नहीं है, उस धन में आदि नहीं है, उस धन में कलह नहीं है, उस धन में मद नहीं है, क्योंकि हमारा है ही नहीं, भगवान का है। किसका? भगवान का है। सुबह रोज मंदिर के अंदर मंगल आरती में भगवान को कहते हैं आपके लिए इतना ये लोगों ने धन संपत्ति आपके चरणों में अर्पण की, तो उसका मालिक तो हम है नहीं, तो उसमें हमको मद क्यों आएगा, और फिर उसके जाने का हमको व्यसन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आया ही भगवान का है, भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा के लिए है, तो उसका व्यसन भी हमको नहीं होगा, और फिर उसका प्रयास के लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप भगवान व्यवस्था करके भेज देते हैं। भगवान को प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान के राधा रानी की सहस्र लक्ष्मियां सेवा करती हैं, आप भगवान के कार्य में लगो कभी धन की कमी नहीं होगी, धन आपके पास भगवान भेजते रहेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जब निर्जन भजन कर रहे थे, एक टाइम का खा रहे थे, वो भी जैसे धरती के ऊपर ढाल के और चाट के खिचड़ी खा लिया, और कोई 64 माला नहीं लेकिन उससे ज़्यादा लाखों का जप कर रहे थे, तो एक दिन विचार आया कि मेरे दोनों गुरुजनों ने भक्ति और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और गौर किशोरदास बाबा जी ने महाराज ने मुझे चेतन महाप्रभु के इस हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए आदेश दिया है। मेरे पास न तो धन संपत्ति है और न जन है, लोक है मेरे साथ सहायता करने के लिए, तो ये मैं कार्य कैसे करूँगा। रात को सोए थे और स्वप्न में देखते हैं पंच तत्व प्रकट हुए हैं और सठ गो सात छः गोस्वामी प्रकट हुए हैं और दोनों गुरुजन प्रकट होके कहते हैं आप निश्चित रूप से बाहर प्रचार के लिए निकलो, असंख्य जन भक्तगण और अखुट खजाना भगवान की कृपा से आपके कार्य के लिए व्यवस्था करके रख दिया गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जैसे बाहर निकले तो थोड़े ही समय में 64 गोरिया मठ भारत से बाहर नेपाल आदि में, बर्मा में और अमेरिका और शायद जर्मनी में भी अपने शिष्यों को भेज के प्रचार का कार्य किया। और उनका एक शिष्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरे विश्व के अंदर इस कार्य को करने के लिए गए, तो वहाँ कितने लोग और कितना धन भगवान ने अपने आप व्यवस्था करके दिया कि ये कार्य हो जाए। तो ऐसे हमको समझ लेना चाहिए कि ये बंधन का कारण तब है वैभव जब हम अपने लिए समझते हैं, और ये मुक्ति का कब साधन बनता है जब ये भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो यहाँ एक श्लोक, कल का श्लोक इसके बाद का पढ़ लेते हैं लेकिन उसके ऊपर बात कल करेंगे, ये भी भगवान बलराम जी की शिक्षा का श्लोक है। त्रैवरग्य कास्य विघातमस्मात् पते विदधते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेय भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्यैः त्रैवर्ग कहते हैं धर्म अर्थ काम को, और चौथा इसमें वर्ग है मोक्ष। तो यहां संकृषण की शिक्षा ये है, वृत्तासुर कहते हैं त्रैवर्गिक आस विघातम, इन तीनों की जो आशा है, आस का मतलब आशा, आशा का मतलब जो मन में डिजायर है, हाँ इच्छा है, विघातम, घातम का मतलब किसी को खत्म करना, विघातम का मतलब विशेष रूप से खत्म करना कि फिर दोबारा जागे ही नहीं, उसको मूल से ही निकाल देना। अस्मात, अस्मात का भक्ति का सूचक है हमारे, हमारे का मतलब भगवान को मेरा मानता है। कहते हैं भक्ति के पांच रस, भगवान के साथ पांच रसों को हम जानते हैं, शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इसमें शांत रस में भगवान के ऊपर पूरी निष्ठा होती है, और दूसरा भौतिक जगत के भोगों से त्याग और विशेष डिटैचमेंट होती है, ये दो चीजें होती हैं। शांत रस में दो चीजें होती हैं, लेकिन एक चीज नहीं होती है। वो चीज आ जाए तो दास्य रस में आ जाएगा शांत वाला। शांत रस के उदाहरण है चार कुमार, नव योगेंद्र, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान के ऊपर पूरा निश्चय है, भौतिक जगत से विरक्ति है, त्याग है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो चीज क्या है, ममत्व। ममत्व का मतलब भगवान मेरा है, जब ममत्व आता है तो दास्य भक्ति शुरू होती है। और यहां कहता है अस्मात हमारे भगवान, भगवान सबके हैं लेकिन भगवान हमारे, ये बहुत भक्ति शुरू होती है जब भगवान को हम अपना मानने लगते हैं। मेरा कृष्ण बलराम है, मैं गौर निताय की सेवा कर रहा हूं, राधा श्याम मेरा प्राण धन है। तो ममत्व आने से भक्ति में दासत्व का आरंभ होता है। तो यहां वृतासुर की, वृतासुर का एक आपको बता दें, कभी कभी भगवान की भाव और प्रेम भक्ति बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधन के अपने आप प्रकट हो जाती है, और वृतासुर उसका उदाहरण है। और वो क्यों प्रकट होती है, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने उस स्तर तक भक्ति कर ली होती है, किसी कारण से अंतिम क्षण में वो भक्ति रह जाती है, और रह जाती है तो दूसरे जन्म में सामान्य रूप से उसकी भक्ति तो दिखती नहीं है, लेकिन वो उस स्तर के ऊपर उसकी भक्ति का एकदम प्रकट हो जाता है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में भाव भक्ति का उदय अचानक किसी के जीवन में हो जाए तो पूर्व जन्म में पूरी की हुई भक्ति में थोड़ी सी बाधा आने के कारण रुकावट हो गई थी, इसलिए इस जन्म में वो अपने आप स्वतः ही प्रकट हो गए। तो वृतासुर इस भक्ति का उदाहरण है। तो क्योंकि इसके अंदर दास्य भक्ति साफ दिख रही है, अस्मात त्रैवरग्य आस विघातम अस्मात, अस्मात हमारे, हमारे के आगे क्या शब्द लिखा है, पति, हमारे पति, देखो पति शब्द लिखा है, अस्मात पति, हमारे पति, जिस माने भगवान जगतनाथ है, हम उसके सेवक हैं। पति के भाव में बहुत से भाव आ सकते हैं, लेकिन पति का मतलब स्वामी, वो हमारे स्वामी। प्रभुपाद जी पति का अर्थ लिखते हैं शब्द अर्थ में स्वामी, हमारे स्वामी, इसका मतलब भगवान आराध्य देव में ममता है, ये दास्य भक्ति का सूचक है। तो यहां धर्म अर्थ और काम के प्रयास को और आशा को जड़ से उखाड़ देते हैं हमारे स्वामी, हमारे स्वामी इसको जड़ से उखाड़ देते हैं। विदधते, पुरुषस्य शक्र, फिर आया इंद्र, जो भगवान का भक्त होता है उसके धर्म अर्थ और काम के प्रयास को भगवान जड़ से उखाड़ देते हैं, हमारे नाथ उनको जड़ से उखाड़ देते हैं। तो क्या होगा, ततो उसके, उससे ये होगा, क्या होगा उससे, ततो अनुमेय, इससे अनुमान लगाना चाहिए, अनुमेय का मतलब अनुमान लगा लो, इससे समझ लो, क्या समझ लो, प्रसाद भगवत प्रसाद, ये भगवान की कृपा है। हमारे नाथ कहते हैं कि वे इस प्रयासों को मैं निष्फल कर देता हूं, इससे अनुमान लगाओ कि ये भगवान की कृपा है, जब कृपा करते हैं तब निष्फल करते हैं, नहीं तो इनमें बंधा रहेगा, ये उनकी कृपा है। और फिर कहते हैं ये कृपा किसको मिलती है, बोला यो दुर्लभ है, ये कृपा दुर्लभ है, ये केवल अकिंचन गोचर को मिलती है, अन्य ही और किसी को नहीं मिलती है। अकिंचन गोचर, अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन गोचर भगवान के अलावा जिसके पास कुछ नहीं है, भगवान की शुद्ध भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ये प्रसाद देते हैं, दूसरों के लिए प्रसाद। इंद्र तेरे जैसे भोग में स्वर्ग के ऐश्वर्य में लिप्त लोगों के लिए ये दुर्लभ है, लेकिन जो अकिंचन भक्त है उनके लिए सुलभ है। यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं। इस श्लोक का भाव कल पढ़ेंगे। ये श्लोक के शब्दों का अर्थ क्या है और इसके बाद वृत्तासुर के चार श्लोक, जिसको वृत्तासुर चलो चतुर श्लोक ही कहते हैं, मानो के ये श्लोक कहने के बाद उनके सामने भगवान जो उनका आराध्य देव शंकृष्ण जी सामने उनको दिखाई दे दिए और फिर इंद्र को छोड़कर वो भगवान शंकृष्ण से सामने संबोधन होके अपने हृदय के भक्ति के उद्गार उनके सामने कह रहे हैं। और क्योंकि यहाँ त्रिवर्ग का वर्ण शब्द आया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो उन चारों श्लोकों में धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, लेकिन भक्तों का क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष है उसका वर्णन है। तो ये हम आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं। 22वें श्लोक के ऊपर फिर कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्ण बोलिए।
जैसे आपने बताया कि इंद्र और वृत्रासुर दोनों को ही भगवान
उनके उनका जैसा भाव है वैसे उनका उनका उसका जो है उसके साथ उनका व्यवहार कर रहे हैं।
लेकिन इंद्र भी तो भगवान की ही इंस्ट्रक्शंस पे स्वर्ग लोक के इंचार्ज बने हुए हैं ना।
तो दोनों ही भक्त है ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं दोनों भक्त हैं, लेकिन एक भक्त अभी तक जो जब सारे देवता भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, लेकिन उनके अंदर शुद्ध भक्ति वो नहीं है जिससे भगवान को पाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वैभव का मन में भाव रहता है तो उनको वो पद दिया जाता है, लेकिन है वो भी भक्त।
पॉइंट ठीक, हाँ वो पॉइंट ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि उनका वैभव का है इंद्र का जो भी, लेकिन मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाह रहा हूँ कि इंद्र भी तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं भगवान की।
नहीं, वृत्रासुर कह रहा है ना आपकी तो विजय होगी, मैं जानता हूँ आपकी विजय होगी, आपका स्वर्ग बचा रहेगा और हम तो वैसे भी प्राण त्यागने के लिए आ रहे हैं और प्राण त्यागना ही मेरा उद्देश्य है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो उसमें प्रभुपाद जी आज मेरे ख्याल जो अभी हमने श्लोक छोड़ा है इसके तात्पर्य में लिखा है कि दोनों में से ये भगवत धाम जाना चाहता है इसके ऊपर अधिक कृपा कर रहे हैं भगवान, उससे अधिक कृपा इसके ऊपर है। जैसे हम चार कुमारों की बात देखते हैं तो चार कुमारों के कारण जय और विजय को श्राप तो मिला, लेकिन भगवान ने कहा इनको लेने मैं जाऊंगा, तो चार कुमारों से ज्यादा कृपा तो जय और विजय के ऊपर हुई। चार कुमार भी भगवान के अवतारों की गिनती में आते हैं, भगवान के ज्ञान के अवतार हैं, लेकिन भगवान की कृपा अपने दासों के ऊपर जय और विजय के ऊपर ज्यादा है कि उनके लिए अवतार लेके आएंगे। चार कुमारों को कहा कि आपने अच्छा किया, उनकी बड़ी महिमा गाई है, उनको कहा कि ब्राह्मण का कोई अपमान मेरा हाथ करे तो हाथ भी काट देता हूं, लगता है कि उनका बहुत बड़ा महिमा गा रहे हैं, लेकिन कृपा तो ज्यादा जय और विजय के ऊपर कर रहे हैं। तो ऐसे कृपा ज्यादा वृत्रासुर के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इंद्र का पोषण कर रहे हैं, इंद्र का पोषण कर रहे हैं और वृत्रासुर के का भी पोषण कर रहे हैं। जैसे जैसे दक्ष का भी पोषण किया कि उसको सृष्टि बढ़ानी थी और नारद का भी पोषण किया उसको व्रत करना था, तो दोनों ही भगवान, जो दक्ष है वो भी भगवान की सृष्टि बढ़ा रहा था तो भगवान की आज्ञा से कर रहा था और नारद भी भगवान की आज्ञा से उनके बेटों को भक्त बना रहा था, तो दोनों के पुष्ट भगवान दोनों का पोषण करते हैं, लेकिन जिसका जैसा भाव है वैसा पोषण करते हैं। तो इंद्र के राज की सुरक्षा का काम किया और वृत्रासुर से भक्ति का प्रचार किया।
और जी अब जब वृत्रासुर समझा मतलब कह रहा है कि जब तुम मेरे को मारोगे तो मेरे को तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, है दोनों भक्त, ये तो लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की दोनों डिवोटीज हैं, उस समय वृत्रासुर ये कहने पर भी इंद्र को मतलब रियलाइजेशन नहीं होती,
इंद्र आगे 12वें श्लोक में, दूसरे 12वें अध्याय के 12वें या 14वें श्लोक में उसको लगता है कि कितनी भक्ति इसके अंदर भरी हुई थी, इसको मारने में वो हिचकिचा रहा था कि मैं मेरे को कहीं अपराध लग जाए ब्रह्म हत्या का, पहला एक ब्रह्म हत्या का अपराध तो लग ही चुका था, तो इसलिए बहुत बड़ा भय भी था। इंद्र इतने कहने के बाद भी नहीं लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा, तब वृत्रासुर को ही आक्रमण शुरू करना पड़ा, तब जाके इंद्र ने वज्र चलाया। तो वृत्रासुर की महिमा इंद्र अगले अध्याय में गाता है, मेरे ख्याल में 12वें अध्याय का 12वां या 14वां श्लोक में इंद्र का शब्द है ये।
इंग्लिश में कह रहे हैं।
हाँ हाँ इंद्र कह रहा है। हाँ 19 में अहो दानव सिद्धो असी, आप सिद्ध हो, सिद्धो असी ये दानव के पुत्र आप सिद्ध हो। यस्य ते मति ईदृशी, ऐसी आपकी बुद्धि है, ऐसी आपकी बुद्धि है। भक्त सर्वात्मा आत्मानाम सुहृदम जगत ईश्वरम। तो ये जो श्लोक है इसमें इंद्र वृत्तासुर के युद्ध के समय इंद्र की ये अनुभूति हो रही है और ये इंद्र अपनी अनुभूति बता रहा है। हरे कृष्ण। हाँ जी धन्यवाद भाई, बोलिए।
प्रभु जी एक प्रश्न था, इसी से रिलेटेड था जो अद्वैत प्रभु ने पूछा है ना, इसी के रिलेटेड है। एक ये ध्रुव महाराज की कथा में हमने हमने पढ़ा था कि ध्रुव महाराज ने तपस्या करी भगवान की, और उस तपस्या के बाद भगवान ने उनको 36,000 वर्ष का राज दिया, पावर दिया, वैभव दिया, वेल्थ दिया, और बाद में उनको फिर लिबरेट भी किया ध्रुव महाराज को।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
तो उनके डिजायर भी पूरे किए, और ध्रुव महाराज बाद में पछताते हैं कि भाई मैं भगवान से मैंने क्या मांग लिया और मुझे क्या मांगना चाहिए था, पर भगवान ने उनके डिजायर पूरे भी किए और बाद में वो दिया। जिससे हम यही सब और यही चीज ये आपने बताया इसमें जो वृत्तासुर और इंद्र के रिलेशन में कि उनका भाव अलग अलग था, तो उसके भाव के हिसाब से भगवान देते हैं। तो इसका मतलब जो है अगर भगवान की भक्ति में या जो भी है, पर अगर हमारे डिजायर अगर मोती अभी है या कुछ है, तो भगवान वो पहले पूरा करेंगे और फिर बाद में आगे उसको सबसे लेंगे, ऐसे कैसे समझे आप इसको?
इसलिए ध्रुव महाराज अर्थार्थी भक्तों की गिनती में आता है, उत्तम भक्ति की गिनती में नहीं आता है। अर्थार्थी भक्त है, उनको उनको जो है अपने पितामह से बड़ा राज चाहिए था। हालांकि भगवान के दर्शन के बाद उनके मन में परिवर्तन आया। इसको कहते हैं कि भगवान के पास कुछ मांगने भी जाओगे तो भगवान इच्छा को पवित्र करने के बाद आपकी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन फिर आप उसका भोग नहीं करोगे, फिर आप उसको भगवान की सेवा में लगाओगे। वैसे आप किसी देवता के पास कोई इच्छा मांगने जाओगे तो आपकी इच्छा की पूर्व इच्छा को पवित्र नहीं कर सकता है वो, इसलिए उस भोग को आप भोगेंगे। तो ये दोनों में अंतर है कि भगवान ध्रुव महाराज की इच्छा पूरी करने के साथ उनके हृदय को पवित्र कर दिया। आज भी ध्रुव लोक को तो भूम वैकुंठ कहते हैं, वहां ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज आज भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। नारद जी मिलने गए थे तो कहे थे क्या भगवान साक्षात मुझे हीरा मिला था और मैंने संसार में कांच के टुकड़े मांग लिए। लेकिन ध्रुव महाराज एक उदाहरण के रूप में जो है, उनका भी पूर्व जन्म की कुछ कथा है। राजकुमार थे न, तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, न किसी राजकुमार की शोभा यात्रा को देखा तो राजकुमार बनने का मन में इच्छा हुई तो राजकुमार बने। लेकिन राजकुमार बनने के बाद कोई साधु का जीवन तो उससे बहुत उत्तम होता है, तो वो भगवान ने उनकी एक इच्छा पूरी कर दी, लेकिन उनकी भक्ति जो थी वो आगे भी ध्रुव महाराज के जो 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 प्रार्थना भगवान को है उसमें उनकी भक्ति फिर प्रकट होती है। इसका मतलब भक्तों की इच्छा को भगवान पूरी करते करते उनकी इच्छा को पवित्र कर देते हैं, उसमें भोग की फिर वासना नहीं रहती है। जैसे सुधामा को भगवान ने इतना बड़ा महल वेखो द्वारका जैसा वैभव दे दिया, लेकिन सुधामा ने उसका भोग नहीं किया। भगवान ने दिखाया कि मैं अपने भक्तों के ऊपर उनके प्रारब्ध कर्म को भी बदल सकता हूँ, लेकिन भक्त उसकी इच्छा नहीं भी करते हैं तो मैं उनको देता हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रचार में उनको लगाते।
बहुत बढ़िया।
हरे
कृष्ण
थैंक यू।
हाँ जी
दानव और दैत्य में क्या अंतर है?
किसमें?
दानव और दैत्य।
वो उसकी माँ के नाम से है। दानू के बेटे का नाम दानव और दित्य के बेटे का नाम दैत्य, फर्क कुछ नहीं है। वो सिर्फ माताओं जैसे अर्जुन को कौंतेय कहते हैं इसलिए उनको दानव और दैत्य कहते हैं। ये दो ये कश्यप की दोनों पत्नियां हैं, तो कश्यप के, इनके नाम, माँ के नाम से इनका नाम ऐसे पड़ गया है।
अच्छा जी,
हाँ, हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण भाई।
हरे
और
कृष्ण।
सुदर्शन जी, क्या समाचार है?
प्रभु जी ठीक है, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
दंडवत।
बहुत अच्छा लगा।
अरे कृष्णा, नहीं है, बहुत भारी है, बहुत भारी है, हेवी है, बहुत हेवी है। संसारियों के हिसाब से ठीक नहीं है, संसारियों के हिसाब से बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने कहा पक्के बन जाओ, फिर कोई मुश्किल नहीं है, कच्चे बनोगे तो जला चला जाएगा। हरि बोल, ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, आज बेंच कहाँ गई? अरे कल वाली बेंच कहाँ चली गई आपकी, पार्क वाली बेंच? रसराज हरी बोल, चलो।